एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
आज की ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन और विचारों की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं जिन्हें अक्सर एक बहुत ही अनोखे नाम से जाना जाता है, अंतिम रोमन और प्रथम स्कॉलेस्टिक। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसका जीवन अंत बहुत दुखद हुआ, पर जिसका काम आने वाली सदियों के लिए ज्ञान का एक पुल बन गया।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एंसियस मैनलियस सेवेरियनस बोथियस की। उनका समय था करीब 477 या 480 ईस्वी से 524 ईस्वी तक।
अच्छा।
और ये वो दौर था जब पश्चिम में रोमन साम्राज्य ढह रहा था, खत्म हो रहा था, और मध्य युग की शुरुआत हो रही थी। मतलब एक बहुत ही उथल पुथल वाला ट्रांजिशन का समय था।
और जो सबसे हैरान करने वाली बात लगती है वो ये कि उनकी सबसे मशहूर रचना वो तब लिखी गई जब वो जेल में थे, अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे।
हाँ हाँ बिल्कुल, यही सबसे मार्मिक बात है।
ये कहानी तो वाकई असाधारण है। चलिए तो फिर इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। उस समय के माहौल को समझना क्यों इतना जरूरी है जहां बोथियस थे?
देखिए, बोथियस का समय समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़े थे। पश्चिमी रोमन साम्राज्य जैसा हम जानते हैं वो औपचारिक तौर पर 476 ईस्वी में खत्म हो चुका था, मतलब उनके जन्म से बस कुछ ही साल पहले। और इटली पर उस समय शासन था ऑस्ट्रोगोथिक राजा थियोडोरिक द ग्रेट का। अब थियोडोरिक जो थे वो एक दिलचस्प शासक थे। जर्मनिक मूल के होते हुए भी वो रोमन प्रशासन, रोमन कल्चर, उसको बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे।
तो मतलब एक मिलीजुली सी स्थिति रही होगी, तनाव भी रहा होगा। एक तरफ पुराने रोमन तौर तरीके, दूसरी तरफ ये नए शासक।
बिल्कुल।
और ऐसे में जो शास्त्रीय ज्ञान था, खासकर ग्रीक भाषा और दर्शन, जो रोमन संस्कृति की एक तरह से नींव थी, वो खतरे में पड़ गया होगा।
बिल्कुल सही कहा आपने। पश्चिमी यूरोप में ग्रीक जानने वाले लोग बहुत कम होते जा रहे थे। प्लेटो और अरस्तु जैसे जो महान दार्शनिक थे, उनके जो असली ग्रंथ थे वो एक तरह से बंद हो रहे थे क्योंकि उन्हें पढ़ने समझने वाले ही नहीं थे।
अच्छा।
और इसी माहौल में बोथियस ने एक बहुत बड़ा, मतलब अविश्वसनीय रूप से बड़ा बीड़ा उठाया। उन्होंने तय किया कि वो प्लेटो और अरस्तु के सारे कामों का लैटिन में अनुवाद करेंगे।
सारे कामों का? ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगता है।
हाँ, ताकि ये ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए बच सके। ये ज्ञान बचाने का एक बहुत बड़ा मिशन था उनके समय के। और लोगों में राजा थियोडोरिक खुद थे और कैसियोडोरस जैसे विद्वान प्रशासक भी थे जो इस बदलते हुए दौर में संतुलन बनाने में लगे थे।
तो इस ऐतिहासिक माहौल में बोथियस का अपना जीवन कैसा था? उनके परिवार के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ बताइए।
बोथियस का जन्म रोम के बहुत ही पुराने और इज्जतदार परिवारों में से एक, इनिसी परिवार में हुआ था। ये परिवार सदियों से रोमन राजनीति में अहम रहा था।
अच्छा।
हालांकि वो कम उम्र में अनाथ हो गए थे, लेकिन उनका पालन पोषण एक और बड़े सम्मानित रोमन अभिजात थे, सेमैचिस, उन्होंने किया। सेमैचिस खुद भी एक विद्वान थे, तो बोथियस को उस जमाने की सबसे अच्छी शिक्षा मिली, जिसमें ग्रीक भाषा और दर्शन का गहरा अध्ययन शामिल था। और ये उस जमाने में 6वीं सदी के रोम में बहुत दुर्लभ बात होती जा रही थी। कुछ लोग तो ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद उन्होंने एथेंस या अलेक्जेंड्रिया जैसे पुराने ज्ञान के केंद्रों में भी पढ़ाई की हो।
और उनका करियर कैसा रहा? सुनने में आता है कि शुरुआती जीवन तो बहुत सफल था उनका।
हाँ बिल्कुल, उनका राजनीतिक जीवन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। राजा थियोडोरिक के राज में उन्हें काफी सम्मान मिला। आप सोचिए, सिर्फ 25 साल की उम्र में वो सीनेटर बन गए।
25 साल में?
हाँ। फिर 510 ईस्वी में कौंसल बने, जो बहुत बड़ा पद था, और आखिर में मास्टर ऑफ ऑफिसेस बने, मैजिस्टर ऑफिशियोरम।
ये क्या पद था?
ये एक तरह से पूरी सिविल सर्विस का मुखिया होता था, आज के जमाने में समझ लीजिए प्रधानमंत्री जैसा रुतबा। और तो और, 522 ईस्वी में उनके दोनों जवान बेटों को एक साथ कौंसिल बनाया गया। ये उनके प्रभाव और सम्मान का शिखर था।
कमाल है, मतलब पूरी तरह से सत्ता के केंद्र में थे वो। लेकिन फिर जैसा अक्सर होता है, किस्मत पलट गई। ये शिखर से नीचे कैसे आए? क्या हुआ ऐसा?
हुआ यूं कि उस समय जो इटली में ऑस्ट्रोगोथिक राज था और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था कॉन्स्टेंटिनोपल में, उनके बीच राजनीतिक और धार्मिक तनाव बढ़ रहा था।
अच्छा।
थियोडोरिक को शक होने लगा था कि रोम के जो सेनेटर हैं वो बिजेंटिन सम्राट के साथ मिलकर उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। और इसी माहौल में बोथियस ने अपने एक साथी सेनेटर थे अल्बनस, उनका बचाव किया। अल्बनस पर आरोप लगा था कि वो थियोडोरिक के खिलाफ बिजेंडियन सम्राट को गुप्त चिट्ठियां लिख रहे थे।
यानी दोस्ती निभाना भारी पड़ गया?
या क्या बोथियस पर जो आरोप लगे उनमें कोई सच्चाई थी? ये देखिए, इतिहास का एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बोथियस वाकई रोमन मूल्यों के लिए खड़े हुए थे और उन्हें झूठे आरोपों में फंसा दिया गया। दूसरे मानते हैं कि शायद वो दरबारी घुटबाजी और राजनीतिक साजिशों का शिकार हो गए। वजह चाहे जो भी रही हो, नतीजा बहुत भयानक हुआ।
क्या हुआ उनके साथ?
बोथियस को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसे कई लोग सिर्फ एक दिखावा मानते हैं। उनकी सारी संपत्ति, सारे पद छीन लिए गए और उन्हें पाविया शहर में कैद कर दिया गया, और बिना किसी ठीक ठाक सुनवाई के उन्हें मौत की सजा सुना दी गई।
ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। इतना विद्वान, इतना सम्मानित व्यक्ति और उसका ऐसा अंत। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरे में ही रोशनी दिखती है। इसी कैद खाने से उनकी वो महान कृति निकली है ना?
बिल्कुल, इसी कैद के दौरान लगभग 523-24 ईस्वी में अपनी मौत से बस कुछ ही पहले बोथियस ने वो किताब लिखी जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया, द कॉन्सोलेशन फिलोसफी,
तत्वज्ञान से सांत्वना।
ये किताब गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है। एक तरह का संवाद है ये। इसमें एक तरफ तो हताश और दुखी बोथियस हैं और दूसरी तरफ एक दिव्य स्त्री पात्र हैं जिन्हें वो लेडी फिलोसफी कहती हैं, मतलब प्रज्ञा देवी।
तो जेल की उस कोठरी में, निराशा के उस माहौल में किन बड़े सवालों से वो जूझ रहे थे इस किताब के जरिए, और क्यों ये किताब इतनी असरदार साबित हुई?
ये किताब उन सवालों से जूझती है जो हमेशा से इंसान को परेशान करते आए हैं, जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, न्याय आखिर है क्या, क्या हमारी किस्मत पहले से तय है या हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, सच्चा सुख क्या है और कहाँ मिलता है।
ये तो बुनियादी सवाल है।
हाँ, और लेडी फिलोसफी धीरे धीरे बोथियस को समझाती हैं कि ये जो बाहरी चीजें हैं, दौलत, शोहरत, सत्ता या किस्मत, ये सब तो आती जाती रहती हैं, क्षणभंगुर हैं।
सही बात है।
सच्चा और टिकाऊ सुख केवल तर्क में, अच्छे गुणों में और ईश्वर में पाया जा सकता है। ये किताब प्लेटो के दर्शन, अरस्तु के तर्क और स्टोइक नैतिकता का एक अद्भुत संगम है।
स्टोइक नैतिकता मतलब?
स्टोइक मानते थे कि सच्ची शांति इस बात पर निर्भर करती है कि हम बाहरी घटनाओं पर कैसे रिएक्ट करते हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल करते हैं। शायद इसकी जो दुखद पृष्ठभूमि थी और जिस तरह गहरे दार्शनिक सवालों के सरल और काव्यात्मक जवाब दिए गए, उसी ने इसे इतना लोकप्रिय बना दिया।
तो अगर तत्वज्ञान से सांत्वना से एक सबसे जरूरी बात हमें याद रखनी हो तो वो शायद यही होगी कि असली खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है।
निश्चित रूप से, बिल्कुल, यही इसका केंद्रीय संदेश है। बाहरी हालात तो बदल सकते हैं, भाग्य धोखा दे सकता है, लेकिन जो हमारी आंतरिक शांति है, हमारा ज्ञान है, उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता।
और उनका वो जो बड़ा अनुवाद वाला प्रोजेक्ट था, प्लेटो और अरस्तु का अनुवाद, उसका क्या हुआ? क्या वो पूरा कर पाए उसे?
दुर्भाग्य से उनकी अचानक मृत्यु की वजह से वो महत्वाकांक्षी सपना अधूरा रह गया। वो अपने लक्ष्य का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही पूरा कर पाए, लेकिन जो हिस्सा उन्होंने पूरा किया ना, वो पश्चिमी विचार के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ।
उन्होंने अरस्तु के जो तर्कशास्त्र पर ग्रंथ थे, लॉजिक पर,
हाँ,
जैसे कैटेगरीज और ऑन इंटरप्रिटेशन, उनका ना सिर्फ अनुवाद किया बल्कि उन पर डिटेल में टीकाएं भी लिखी, कमेंट्रीज।
अच्छा,
और इन अनुवादों का क्या महत्व था? इतना क्यों जरूरी था ये
महत्व? आप जरा सोचिए, लगभग 700 सालों तक पश्चिमी यूरोप में तर्कशास्त्र की, लॉजिक की लगभग सारी समझ सिर्फ और सिर्फ बोथियस के इन्हीं अनुवादों और टीकाओं पर आधारित थी।
700 साल, ये तो
अविश्वसनीय है।
हाँ,
इसे मध्ययुग में लॉजिका वेटस कहते थे, यानी पुराना तर्क। इसने जो मध्ययुगीन विश्वविद्यालय थे उनमें लॉजिक की पढ़ाई की नींव रखी। ये सोचना भी मुश्किल है कि एक अकेले आदमी के काम पर सदियों का बौद्धिक विकास निर्भर रहा।
तो असल में मध्ययुगीन विचारकों के लिए अरस्तु की आवाज कई सदियों तक बोथियस की आवाज ही थी। ये दिलचस्प है कि वो तर्क पर इतना काम कर रहे थे, क्या उन्होंने यही लॉजिकल तरीका उस समय के जो मुश्किल धार्मिक सवाल थे उन पे भी लागू करने की कोशिश की?
हाँ बिल्कुल, दर्शन और तर्क के अलावा उन्होंने धर्मशास्त्र, थियोलॉजी पर भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उनके 5 ग्रंथ हैं जिन्हें ओपिस्कुला सैक्रा कहते हैं, मतलब पवित्र छोटे ग्रंथ।
अच्छा।
इनमें उन्होंने ईसाई धर्म के जो बहुत गूढ़ सिद्धांत थे, जैसे ट्रिनिटी यानी ईश्वर के 3 रूप, या ईसा मसीह की प्रकृति कैसी थी, इन सब का विश्लेषण करने के लिए कठोर दार्शनिक और तार्किक तरीकों का इस्तेमाल किया। ये काम स्कॉलास्टिक पद्धति का एक बहुत शुरुआती और शानदार उदाहरण है। स्कॉलास्टिक पद्धति मतलब आस्था के सवालों को तर्क की कसौटी पर कसना, और इसी वजह से उन्हें बाद में चर्च के पिताओं में गिना गया, चर्च फादर्स में।
तो क्या हम कह सकते हैं कि उन्होंने आस्था और तर्क के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की?
हाँ, इस तरह से कह सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने गणित और संगीत पर भी ग्रीक स्रोतों के आधार पर किताबें लिखीं, डे अरिथमेटिका यानी अंक गणित पर, और डे म्यूजिका संगीत पर।
अच्छा, संगीत पर भी?
हाँ, और ये किताबें भी मध्ययुगीन विश्वविद्यालयों में स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बन गई और क्वाड्रिवियम का आधार बनी।
क्वाड्रिवियम?
ये मध्ययुगीन शिक्षा में चार मुख्य विषय माने जाते थे, अंक गणित, ज्यामिति, संगीत और खगोल विज्ञान। तो बोएथियस ने इन चारों की नींव रखी।
तो अगर हम बोएथियस के पूरे दार्शनिक योगदान को समेटना चाहें तो मुख्य बात क्या निकल कर आती है?
देखिए, उनका सबसे बड़ा योगदान था जो क्लासिकल यूनानी दर्शन था, प्लेटो, अरस्तु, स्टोइक, नियो प्लेटोनिज्म, और जो उस समय उभर रहा ईसाई धर्मशास्त्र था, उनके बीच एक सेतु बनाना, एक पुल बनाना। उन्होंने पुराने ज्ञान को मध्य युग के लिए बचाया और उसे प्रासंगिक बनाया। उन्होंने वो वैचारिक ढांचा और वो शब्दावली दी जिसका इस्तेमाल करके आने वाली सदियों के दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों ने अपने विचार आगे बढ़ाए। वो सचमुच में प्रथम स्कॉलास्टिक थे जिन्होंने आस्था और तर्क को मिलाने की राह दिखाई।
ये जो स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल और ईश्वर का सर्वज्ञान, मतलब क्या ईश्वर भविष्य जानता है, ये मुद्दा हमेशा से बहुत उलझा हुआ रहा है। अगर ईश्वर सब कुछ पहले से जानता है तो क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? इस गुत्थी को बोथियस ने कैसे सुलझाने की कोशिश की?
ये तत्वज्ञान से सांत्वना के सबसे गहरे और प्रभावशाली हिस्सों में से एक है। बोथियस लेडी फिलॉसफी के माध्यम से ये तर्क देते हैं कि ईश्वर का ज्ञान हमारी तरह समय के बंधन में नहीं है।
अच्छा, कैसे?
ईश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखता है, एक शाश्वत वर्तमान में, इटर्नल प्रेजेंट में। जैसे हम किसी सड़क पर चलते हुए लोगों को एक ऊंची मीनार से एक साथ देख सकते हैं ना, उसी तरह ईश्वर समय की पूरी धारा को एक साथ देखता है।
दिलचस्प।
वो भविष्य को जानता है, लेकिन उसका जानना हमारे चुनाव का कारण नहीं बनता, इसलिए ईश्वर का पूर्वाभास हमारी स्वतंत्रता को खत्म नहीं करता।
ये तो बहुत ही सूक्ष्म और गहरा विचार है। और व्यक्ति की प्रकृति के बारे में या ज्ञान के बारे में उनके क्या खास विचार थे?
उन्होंने ज्ञान के अलग अलग स्तरों में फर्क किया। सबसे पहले इंद्रिय बोध, सेंसेशन, फिर कल्पना, इमेजिनेशन, फिर तर्क, रीजन, और सबसे ऊंचा स्तर प्रज्ञा, इंटेलिजेंस। हर स्तर सच्चाई को अपने तरीके से समझता है। और व्यक्ति यानी पर्सन की उनकी परिभाषा बहुत मशहूर हुई और सदियों तक प्रभावशाली रही, तर्कसंगत प्रकृति का एक व्यक्तिगत पदार्थ।
तर्कसंगत प्रकृति का एक व्यक्तिगत पदार्थ,
हाँ, रैशनलिस नथुराय इंडिविडुआ सब्सटांचिया। इस परिभाषा का इस्तेमाल ट्रिनिटी और ईसा मसीही की प्रकृति जैसे जटिल धार्मिक सवालों के विश्लेषण में बहुत हुआ। और हाँ, एक और बड़ा दार्शनिक सवाल उन्होंने मध्ययुगीन विचारकों के सामने रखा, सार्वभौमिकों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स।
क्या दुनिया में सिर्फ अलग अलग इंसान है या मानवता नाम की कोई असली चीज भी है?
बिल्कुल यही सवाल। ये सवाल मध्ययुगीन दर्शन के केंद्र में रहा और इस पर बहुत लंबी बहसें चली। बोथियस ने इस बहस की शुरुआत की।
उनकी किताब तत्वज्ञान से सांत्वना मध्य युग में इतनी लोकप्रिय क्यों हुई? इसका असर कहां कहां तक फैला?
अरे, ये किताब तो मध्य युग और पुनर्जागरण काल की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज्यादा अनुवाद की जाने वाली और सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक बन गई।
सच में?
हाँ, इसकी लोकप्रियता बाइबल और संत ऑगस्टीन की रचनाओं के बराबर मानी जाती थी। इसका अनुवाद लगभग हर यूरोपीय भाषा में हुआ। इंग्लैंड में तो राजा अल्फ्रेड महान, महान कवि जेफ्री चौसर और यहाँ तक कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भी इसका अनुवाद किया था।
महारानी एलिजाबेथ ने भी?
हाँ, इसकी कहानी में जो दर्द था, दर्शन की जो गहराई थी और जिस खूबसूरती से इसे लिखा गया था, उसने लोगों के दिलों को छू लिया। ये उस युग के लिए एक तरह की सेल्फ हेल्प गाइड बन गई थी।
और विश्वविद्यालयों और विचारकों पर उनके तर्कशास्त्र वाले काम का क्या असर रहा?
जैसा हमने पहले कहा, उनके तर्कशास्त्र के अनुवाद और टीकाएं, वो लॉजिका वेटस, मध्ययुगीन विश्वविद्यालयों के कोर्स की रीढ़ की हड्डी बन गए। लगभग 700 सालों तक यूरोप के बड़े बड़े विचारक तर्क और दर्शन सीखने के लिए बोथियस पर ही निर्भर थे। वे पूरे स्कॉलिस्टिक आंदोलन की नींव थे जिसने बाद में एनसेल्म और थॉमस एक्विनास जैसे महान दार्शनिकों को जन्म दिया। कहते हैं कि थॉमस एक्विनास ने अपने लेखन में 400 से ज्यादा बार बोथियस का जिक्र किया है।
400 बार? ये तो जबरदस्त प्रभाव है। क्या आज के दौर में, मतलब 1500 साल बाद भी बोथियस के विचार मायने रखते हैं? क्या वो आज भी प्रासंगिक हैं?
बिल्कुल, वो जो बुनियादी सवाल बोथियस ने अपनी जेल की कोठरी में उठाए थे, न दुख का मतलब क्या है, अच्छे लोगों पर मुसीबत क्यों आती है, सच्ची खुशी कैसे मिलेगी, क्या हम स्वतंत्र हैं या सब कुछ पहले से तय है, ये सवाल आज भी उतने ही रेलेवेंट है जितने तब थे।
हाँ, ये बात तो है।
अन्याय, अनिश्चितता, व्यक्तिगत दुख, इन सब का सामना तो आज भी इंसान करता है। इसीलिए बोथियस का दर्शन, धर्मशास्त्र और साहित्य में अध्ययन आज भी जारी है। स्वतंत्र इच्छा और नियतिवाद पर उनकी जो बहसें हैं, वो आज भी समकालीन दर्शन में गूंजती हैं।
उनके कुछ मशहूर कथन भी हैं जो उनके विचारों की गहरी छाप छोड़ते हैं। जैसे एक है, कोई भी चीज तब तक दयनीय नहीं है जब तक आप उसे ऐसा न समझें, और दूसरी ओर कोई भी चीज तब तक खुशी नहीं लाती जब तक आप उससे संतुष्ट न हो। ये तो सीधे सीधे स्टोइक दर्शन की याद दिलाता है कि हमारी खुशी बाहरी हालात पर नहीं, हमारी अपनी सोच पर निर्भर है।
हाँ, और एक और बहुत ही मार्मिक कथन है जो शायद उनके अपने व्यक्तिगत दुख से निकला है, क्योंकि भाग्य की सभी विपत्तियों में सबसे बड़ी दुखद बात है कभी सुखी रहा होना। हालांकि किताब में लेडी फिलॉसफी बाद में उन्हें समझाती हैं कि ये नज़रिया भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि सच्चा सुख तो ऐसा होता है जिसे कोई छीन ही नहीं सकता।
और लेडी फिलॉसफी का ये सवाल तो सीधे जैसे दिल पर लगता है, हे नश्वर लोगों, तुम सुख को अपने बाहर क्यों खोजते हो जो तुम्हारे भीतर ही स्थित है? ये शायद उनके दर्शन का सार है। बाहरी चमक दमक छोड़ो, अंदरूनी गुण और ज्ञान में शांति ढूंढो।
और बुराई की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ईविल, पर उनका ये क्लासिक सवाल आज भी दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों को सोचने पर मजबूर करता है। यदि ईश्वर है तो इतनी बुराइयां कहां से आती हैं? यदि ईश्वर नहीं है तो कोई अच्छाई कहां से आती है? इसी पहेली को तत्वज्ञान से सांत्वना सुलझाने की कोशिश करती है।
बोएथियस के बारे में कुछ और रोचक या कम ज्ञात बातें भी हैं जो शायद सुनने वालों को दिलचस्प लगें।
हाँ, कुछ बातें हैं, जैसा हमने कहा, बोएथियस शायद पश्चिमी रोमन दुनिया के आखिरी बड़े बुद्धिजीवी थे जो ग्रीक भाषा एकदम फर्राटे से पढ़ो समझ सकते थे, मतलब प्लेटो अरस्तु को ओरिजिनल में पढ़ सकते थे।
अच्छा।
उनकी मृत्यु के बाद पश्चिमी यूरोप में ये क्षमता लगभग गायब ही हो गई। एक तरह से देखें तो वो प्राचीन ज्ञान की जो सीधी परंपरा थी, उसके आखिरी संरक्षक थे।
उनके परिवार के बारे में भी कुछ दिलचस्प है।
उनके परिवार, एनईसी का एक आदर्श वाक्य बताया जाता है, भाग्य की कठोरता को बुद्धि से नियंत्रित किया जाता है, जो उनके अपने जीवन और उनकी आखिरी किताब को देखते हुए कितना सटीक भी लगता है और कितना विडंबनापूर्ण भी।
हाँ, ये तो है।
एक और दिलचस्प बात यह है कि उनके एक रिश्तेदार, कुछ लोग मानते हैं कि प्रपौत्र, बाद में पोप ग्रेगरी द ग्रेट बने, जो खुद मध्ययुगीन चर्च के एक महान संत और सुधारक थे।
उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस बारे में भी कुछ कहानियां हैं क्या?
हाँ, एक भयानक कहानी है कि उन्हें सिर पर रस्सी बांधकर धीरे धीरे कसते हुए बहुत यातनाएं देकर मारा गया था। हालांकि इस क्रूर तरीके का कोई पक्का ऐतिहासिक सबूत नहीं है, पर यह तय है कि उनका निष्पादन अन्यायपूर्ण था, और उस जमाने में भी इसने कई लोगों को झकझोर दिया था। और एक आखिरी दिलचस्प पहलू यह है कि कैथोलिक चर्च उन्हें एक संत और शहीद मानता है, संत सेवेरिनस बोथियस। उनका पर्व 23 अक्टूबर को मनाया जाता है।
संत मानते हैं?
हाँ, और ये इस बात के बावजूद है कि उनकी सबसे मशहूर और आखिरी किताब तत्वज्ञान से सांत्वना, उसमें ईसाई धर्म के जो खास सिद्धांत हैं जैसे ईसा मसीह या बाइबल, उनका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। ये भी एक विडंबना ही है। साथ ही लेडी फिलॉसफी का जो चरित्र है, वो कला और साहित्य में ज्ञान और सांत्वना का एक स्थायी प्रतीक बन गया। उसने दांते जैसे महान कवियों को भी प्रेरणा दी।
आपने ये बताया कि उनकी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण किताब में स्पष्ट ईसाई संदर्भ नहीं है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है, खासकर ये देखते हुए कि उन्होंने धर्मशास्त्र पर भी लिखा और उन्हें संत भी माना जाता है। क्या ये एक विवाद का विषय रहा है?
हाँ, बिल्कुल, ये बोथियस स्टडीज में सबसे बड़ा और लगातार चलने वाला बहस का मुद्दा रहा है। एक व्यक्ति जिसने ईसाई धर्म के इतने गूढ़ सिद्धांतों पर ग्रंथ लिखे, वो अपनी अंतिम सबसे व्यक्तिगत कृति में ईसा मसीह, चर्च या मोक्ष का जिक्र क्यों नहीं करता?
हाँ, ये सवाल तो उठता है।
किताब ईश्वर की बात करती है, ईश्वरीय विधान की बात करती है, प्रार्थना की बात करती है, लेकिन पूरी तरह से दार्शनिक तर्कों पर आधारित है, ना कि ईसाई रहस्योद्घाटन या रेवेलेशन पर।
तो विद्वान इसकी क्या वजह बताते हैं? ऐसा क्यों हो सकता है?
देखिए, कई तरह की व्याख्याएं हैं। एक विचार ये है कि बोथियस ये दिखाना चाहते थे कि सिर्फ तर्क और दर्शन के सहारे इंसान कहां तक पहुंच सकता है, बिना किसी धार्मिक विश्वास के। ये फिलॉसफी की अपनी ताकत का प्रदर्शन था।
अच्छा,
दूसरा विचार यह है कि यह असल में एक बहुत गहरा ईसाई काम है, लेकिन इसे जानबूझकर क्लासिकल दर्शन के रूपक में लिखा गया ताकि यह ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, जिनमें शायद गैर ईसाई भी शामिल हों।
हाँ, ये भी हो सकता है।
और एक तीसरा नजरिया ये भी है कि शायद अपने अंतिम उन निराशा भरे क्षणों में बोएथियस को जो विशिष्ट धार्मिक सिद्धांत थे उनकी बजाय दर्शन के जो सार्वभौमिक सत्य थे, तर्क, सद्गुण, आंतरिक शांति, उनमें ज्यादा वास्तविक और तत्काल सांत्वना मिली।
तो मतलब उनका जीवन और उनका अंतिम काम हमें कई गहरे सवालों के साथ छोड़ जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो दो दुनियाओं के बीच खड़ा था, एक तरफ ढलता हुआ रोमन साम्राज्य, दूसरी तरफ उभरता हुआ मध्य युग। एक विद्वान जिसने ज्ञान को बचाने की कोशिश की, राजनीति का शिकार हुआ और फिर चरम विपत्ति में दर्शन में सुकून पाया।
बिल्कुल, वे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं जो आज भी उतना ही मौजू है।
और वो सवाल क्या है जिस पर हमारे सुनने वाले विचार कर सकते हैं?
सवाल ये है कि जब जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई आती है, अन्याय होता है या अनिश्चितता होती है, तो क्या दर्शन के जो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, जैसे तर्क का इस्तेमाल करना, अच्छे गुणों का अभ्यास करना, आंतरिक शांति की खोज करना, क्या ये हमें उतनी ही या शायद एक अलग तरह की सांत्वना दे सकते हैं जितनी की कोई विशिष्ट धार्मिक आस्था देती है? बोथियस की अंतिम कृति कम से कम इस संभावना की ओर तो इशारा करती ही है। या फिर जैसा कि कई मध्ययुगीन विचारक मानते थे, क्या दर्शन और आस्था एक ही परम सत्य तक पहुंचने के दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे के पूरक रास्ते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें बोथियस की विरासत के रूप में मिला है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।